लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे सांत्वना दे, कपट के मार्ग से मुझे दूर रख और अपनी संहिता पर चलने की कृपा प्रदान कर। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 28वें और 29वें पदों के शब्द। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। जीवन में नियमों के महत्व पर इस भजन में प्रकाश डाला गया है, क्योंकि जो लोग नियमों पर चलकर अपना जीवन यापन करते हैं वे अपार आनंद में जीते हैं, जबकि जो लोग नियमों की उपेक्षा करते हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। नियमों को ठुकराने वाले की मनोदशा निराशा और मायूसी भरी होती है, उसका रवैया सब तरह से नकारात्मक होता है। इन्हीं कुछ एक बातों पर 119वें भजन में हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया है। भजनकार आग्रह करता है कि व्यक्ति ईश नियमों पर चले, संहिता की शिक्षा पर चले, प्रभु के मार्ग को आत्मसात करे, उसे बुद्धि गम्य करे तथा प्रभु के अपूर्व कार्यों पर मनन चिंतन करे, तभी उसका जीवन सफल और सुखमय हो सकता है। उसका परामर्श है कि व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखे तथा बेझिझक और बिल्कुल निश्चिंत होकर उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखे। भजन के 28वें और 29वें पदों में भजनकार कहता है, मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे सांत्वना दे, कपट के मार्ग से मुझे दूर रख और अपनी संहिता पर चलने की कृपा प्रदान कर। श्रोताओं, मानव मन की व्यथाएं उत्कंठाएं बदलती रहती हैं, उसकी मनोदशा भी इसी तरह परिवर्तित होती रहती है। जीवन में कभी मनुष्य सुख पाता है तो कभी दुख, कभी तूफान आता है और कभी आंधी, तो कभी शीतल हवाएं, और इन्हीं पर निर्भर रहती है हमारी चित्त वृत्ति। आज हमारा मन प्रसन्न है तो कल हम दुखी भी हो सकते हैं। आज हम सुख की नींद सो रहे हैं तो कल हो सकता है कि गहन चिंताओं में डूब जाएं। प्रायः यह भी देखा गया है कि दुख के क्षणों में हृदय की अतल गहराइयों में छिपी व्यथाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। 119वें भजन के रचयिता की व्यथाओं को भी ऐसे ही शब्दों में अभिव्यक्ति मिली और इन्हीं शब्दों का उच्चार कर उसने प्रभु को बताया कि उसकी आत्मा दुख के आंसू बहाती है। प्रभु से वह याचना करता है कि अपनी प्रतिज्ञा को याद कर प्रभु उसे सांत्वना प्रदान करें तथा कपट के मार्ग से दूर रखकर उसे संहिता पर चलने की कृपा प्रदान करें। वह जीवन यापन के तौर तरीकों को प्रभु ईश्वर के सिपुर्द कर देता है, इस विश्वास के साथ कि प्रभु ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही वह अपने जीवन में यथार्थ सुख, समृद्धि, सफलता और शांति का अनुभव कर सकता है। आगे 119वें भजन के 30वें, 31वें और 32वें पदों में कहता है, मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों को हृदयंगम किया है, मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। प्रभु, तू मुझे निराश मत होने दे, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि तू मुझमें नव जीवन का संचार करता है। श्रोताओ, यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि इस भजन में कई बार प्रार्थना करने वाला प्रभु के मार्ग वाक्यांश का उपयोग करता है। 28 से लेकर 32 तक के पदों में ही वह चार बार मार्ग शब्द का प्रयोग करता है। आखिर प्रभु का मार्ग है क्या? कौन सा है वह रास्ता जिसे हम प्रभु का मार्ग कह सकते हैं? भजनकार ने इस शब्द द्वारा यानी कि मार्ग द्वारा यह दर्शाना चाहा है कि वह अनवरत ईश आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे इजरायली जाति मिस्र की दासता से मुक्त होने के बाद प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ती चली गई थी। वस्तुतः संपूर्ण तोरा गति के बारे में है, चलते रहने के बारे में है। इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन करना और अपनी समझदारी में विकसित होना भी गतिशील होना है। श्रोताओ, बाइबल के अर्थों में जीवन एक स्थिर अनुभव नहीं है, अपितु यह एक खास लक्ष्य की ओर नित्य आगे बढ़ते रहने वाला संघर्ष है। हालांकि जो इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है वह गहन संतोष प्राप्त करता है, इसलिए कि प्रभु ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता के कारण वह जीवन का हर संघर्ष पार कर लेता है। दूसरी ओर तोराह का अध्ययन व्यक्ति में ईश्वर की समझ उत्पन्न करता है, वह समझ जिससे व्यक्ति नबी मूसा की तरह ईश्वर का अनुभव पा लेने पर ईश्वर के वैभव पर आश्चर्यचकित रह जाता तथा उनकी खोज के लिए निकल पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में प्रभु ईश्वर मूसा पर अपने 10 नियमों को प्रकट करते हैं। श्रोताओ, निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय में हम प्रभु के 10 नियमों को पढ़ते हैं, किंतु इन्हें पढ़ने के उपरांत इसी ग्रंथ के 23वें अध्याय के 19वें पद में हम प्रभु के इन शब्दों को भी पढ़ते हैं। लिखा है, किसी मेमने को उसकी माँ के दूध में मत उबालो। भला इस वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है? संहिता के नियमों को प्रकट करने के बाद प्रभु ईश्वर मानव मनुष्यों को एक बार फिर धरती की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। अस्तु, इस वाक्य का अर्थ यही है कि यदि मनुष्य ईश आदेशों के अनुकूल समुदाय में जीवन यापन करने का चयन करता है तब उसे केवल ईश्वर से प्यार नहीं करना चाहिए बल्कि ईश्वर के साथ साथ अपने भाई और पड़ोसी से भी प्यार करना चाहिए। विशेष रूप से दुर्बल और निर्धन भाइयों की मदद को आगे आना चाहिए तथा उस वातावरण के प्रति उत्कंठित रहना चाहिए जिसमें प्रभु ईश्वर ने उसे जीवन यापन का मौका दिया है। इस प्रकार श्रोताओं, 119वें भजन के उक्त शब्दों में इस विचार को अभिव्यक्ति मिली है कि नियम का पालन करना, विधान और कानून को बनाए रखना वस्तुतः जीवन है और ईश्वर ने यही चाहा है कि मनुष्य जीवन जिए, विपुल जीवन प्राप्त करे। इसीलिए तो भजनकार कहता है, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ क्योंकि तू मुझमें नव जीवन का संचार करता है।
वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 7 नवंबर के ट्वीट संदेश में कहा, ख्रिस्त आशा ख्रिस्त की ज्योति से पोषित पुनरुत्थान लाती तथा जीवन को दुनिया के सबसे अंधकार में रात में भी चमकाती है। संत पापा फ्रांसिस ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 31वीं सभा के प्रतिभागियों को संदेश दिया, पदार्थ जो ओजोन परत को क्षीण करते हैं, इस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 31वीं सभा के प्रतिभागियों को संत पापा ने कहा कि यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए अपने संशोधनों और वियना कन्वेंशन के साथ मिलकर न केवल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बल्कि अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। 22 मार्च 1985 को वियना में हस्ताक्षरित ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लगभग 35 साल बीत चुके हैं। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का पहला कन्वेंशन था ताकि राष्ट्रों की ओर से सार्वभौमिक समर्थन हासिल किया जा सके, जिसमें आज 197 देश शामिल हैं। संत पापा ने कहा, इन 35 सालों ने सकारात्मक फल उत्पन्न किए हैं। वास्तव में कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से नवीनतम अध्ययन ओजोन परत के धीरे धीरे क्षीण होने पर की गई है। इस संबंध में 35 वर्षों में जो सीख मिली है उसके आधार पर संत पापा ने 3 बातें रखी। पहला, इस बात पर जोर देने और सराहना करने की आवश्यकता कि किस तरह शासन, वैज्ञानिक समुदाय, राजनीतिक जगत, आर्थिक और औद्योगिक अभिनेता तथा नागरिक समाज के व्यापक एवं फलदायी सहयोग से उत्पन्न हुए हैं। इस सहयोग ने दिखाया है कि हम किस तरह महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जो एक साथ सृष्टि की रक्षा करना, समग्र मानव विकास को बढ़ावा देना और जिम्मेदार पूर्ण एकजुटता की भावना से आम घर की देखभाल करना तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए गहन सकारात्मक नतीजों के साथ संभव बनाते हैं। एक निश्चित अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन व्यवस्था यह प्रदर्शित करता है कि हमें तकनीकी को सीमित करने और उसका नियंत्रण करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हम इसे दूसरे प्रकार की प्रगति की सेवा में लगा सकते हैं, जो कि अधिक स्वस्थ, अधिक मानवीय, अधिक सामाजिक और अधिक अभिन्न हो। संत पापा ने कहा कि हम सार्वजनिक संसाधनों के खिलाफ सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ एक ईमानदार एवं फलप्रद बातचीत जो विभिन्न आवश्यकताओं को सुन सकता है एवं विशेष रुचि से मुक्त है, एकात्मकता एवं रचनात्मकता की भावना के साथ ग्रह के वर्तमान और भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरे बिंदु पर संत पापा ने कहा कि सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना केवल तकनीकी के आधार पर नहीं किया जा सकता, जिसको समस्या के हल का एकमात्र तरीका बतलाया गया है। यह वास्तव में चीजों के बीच संबंधों के रहस्यमय नेटवर्क को दिखलाने में असमर्थ साबित होता है और इसलिए कभी कभी एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देती है। 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक नया संशोधन किंगली संशोधन को अपनाने की आवश्यकता ने यह सबूत दिया था। इस संशोधन का उद्देश्य उन पदार्थों को प्रतिबंधित करना है जो स्वयं में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में योगदान नहीं करते हैं, लेकिन जो वायुमंडल की गर्मी को प्रभावित करते और जिनका प्रयोग ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थों की जगह के रूप में बढ़ गया है। संत पापा ने कहा कि संबंध में परमधम पीठ द्वारा किंगली संशोधन का पालन करने की इरादे की घोषणा पर मैं प्रश्न हूँ। इस भाव के साथ परमधम पीठ उन सभी राज्यों को अपने सामान्य घर की देखभाल के लिए अपना नैतिक समर्थन देना जारी रखना चाहता है। तीसरी सीख के बारे बतलाते हुए संत पापा ने कहा कि हमारे आम घर की देखभाल को यह एहसास होना चाहिए कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। यह कहा जा सकता है कि किंगली संशोधन भी इस सिद्धांत के लिए अपील करता है, क्योंकि यह ओजोन समस्या और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के बीच एक प्रकार का सेतु का काम करता है। इस प्रकार उनकी परस्पर क्रिया को उजागर करता है। संत पापा ने प्रतिभागियों से कहा कि मैं अपनी प्रार्थनापूर्ण आशा व्यक्त करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन व्यवस्था साथ ही हमारे सामान्य घर की देखभाल पर वैश्विक समुदाय की अन्य सराहनीय पहल, जो जटिल और चुनौतीपूर्ण है किंतु हमेशा प्रेरणादायक पथ पर जारी रह सके। कैथोलिक उदारता संगठन कारितास की यूरोप शाखा ने आम घर यूरोप रिपोर्ट जारी किया है ताकि वैश्विक स्तर पर और सतत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ इसके संबंध में आप्रवास के सकारात्मक आयाम के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। बुधवार को जारी रिपोर्ट का शीर्षक है आम घर आप्रवास एवं विकास यूरोप और बाहर में। दस्तावेज 11 यूरोपीय देशों में किए गए विश्लेषण गवाही और अच्छी प्रथाओं पर आधारित है। कारितास के अनुसार सही स्थिति में आप्रवास द्वारा समस्त मानव विकास को सहयोग मिल सकता है। इस तरह मूल देश और गंतव्य देश दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं। रिपोर्ट में 27 खास अनुशंसाएं हैं, जिसमें यूरोपीय संघ नीति निर्माताओं को 3 मुख्य बिंदुओं पर संबोधित किया गया है। पहला, आप्रवासियों और आप्रवास की ओर बढ़ती शत्रुता तथा हानिकारक दृष्टिकोणों का मुकाबला करने के लिए आप्रवासन पर नकारात्मक तर्क को बदलने की आवश्यकता। दूसरा, आप्रवासन की विकास क्षमता को अधिकतम करना तथा गंतव्य देश में आप्रवासियों के अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, आप्रवासियों को अपने मूल देश में योगदान देने का अवसर प्रदान करना। पलायन और विकास के बीच एक नेकी चक्र सुनिश्चित करना। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यूरोपीय संस्थानों को तीसरे देशों के साथ सभी साझेदारी के मूल मानवाधिकारों के लिए सम्मान को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बाहरी नीतियां विकासशील देशों में मौजूदा विकास के अवसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कलीसिया के परमाध्यक्ष के साथ अपनी पंचवर्षीय पारंपरिक मुलाकात अदली मीना के लिए अमेरिका से रोम पधारे काथी धर्माध्यक्षों ने 7 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की। धर्माध्यक्ष एडगर दा कुन्हा ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि अमेरिकी कलीसिया आप्रवासियों द्वारा बनी है और वे उनके अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। फिलीपींस के उत्तरी कोतापातो में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है, जबकि करीब 100 लोग घायल हैं तथा 24,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आकस्मिक घटना ने पूरे क्षेत्र के करीब 188,000 लोगों को प्रभावित किया है। कारितास फिलीपींस ने देश के सभी धर्म प्रांतों से अपील की है कि वे पीड़ित समुदाय की सहायता करें। कारितास फिलीपींस के महासचिव फादर एडविन ने कहा, देश में डर की स्थिति है किंतु हमें अनुदान और ठोस समर्थन की आवश्यकता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।